समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। तो श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो श्रोताओं, परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, नमस्कार राधा, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, आई एम श्योर मुकेश दैट एवरीवन इज प्रोबेबली इन द वीकेंड मोड नाउ। तो जाहिर सी बात है, और जस्ट अभी फेस्टिव सीजन तो चल ही रहा है, दशहरा खत्म हुआ, दिवाली की तैयारियां शुरू हैं, सो वी अंडरस्टैंड हाउ बिजी योर वीकेंड्स आर गोइंग टू बी। बट उसको थोड़ा सा, अगर आप जा रहे हैं इस वक्त शॉपिंग करने, रास्ते में हमारा प्रोग्राम सुनते सुनते जाएंगे तो थोड़ा सा, कहते नहीं, ये चार चांद लग जाएंगे उस शॉपिंग में। एंड यस, मुकेश हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो। हस्ब दस्तूर हम लाते हैं देश की खबरें तो लाते ही, उसके अलावा नाम है जब शो का परिक्रमा, तो देश की परिक्रमा तो करेंगे ही। यस, वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव, बिकॉज मुकेश वी सी दैट नॉट ऑल स्टोरीज आर यू नो दे पार्ट ऑफ द मेन बुलेटिन्स। देर आर सम स्टोरीज दैट आर वर्थ टेलिंग आर लिसनर्स, बट क्योंकि वो सॉफ्ट नेचर में होती हैं तो वो मेन हार्ड न्यूज में नहीं आ पाती,
और उनकी कोशिश होती है कि हम लोग उन स्टोरीज को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करें।
एब्सोल्युटली, सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस मुकेश।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत के डेयरी क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में 70% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। श्री शाह ने हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया।
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन असर्ट्स कंट्रीज इकॉनमी इज रेजिलिएंट अमिड ग्लोबल वॉलेटिलिटी, हाईलाइट्स द नीड ऑफ 8% जीडीपी ग्रोथ फॉर विकसित भारत।
आकाशवाणी के लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम के आज 11 वर्ष पूरे।
डेथ टोल इन टाइफून बोलोई इन वियतनाम राइजेस टू 51।
और मौसम विभाग ने आज बिहार और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया।
एंड नाउ वी ऑब्वियसली ओपन द शो विद आवर स्पेशल सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, in which we take a look at the developments that take place at the national or global level. And well, Mukesh, today we are going to talk about Indian Air Force Day. Yes, just telling our listeners कि खाली आप एक नाम ये ले लेते हैं ना कि Air Force या कोई भी Defence Force का, हम लोग अपनी Armed Forces का, तो अपने आप ही एक जज्बा जो है जाग जाता है, isn't it, nationalism का। And yes, today's feature is not just a show, it's a tribute, a celebration. Today we are marking 93 years of glory, celebrating Indian Air Force Day. Yes, today is the 93rd anniversary of one of the world's finest air forces, our pride, our shield, our sky warriors, the Indian Air Force. एंड यस मुकेश, सबको जो है इस साउंड इफेक्ट से अंदाजा हो गया होगा कि जब इस तरह की आवाजें आसमान में गूंजती हैं तो दिल में एक अजीब सी एक धड़कन भी तेज हो जाती है। इट गिव्स एन एड्रेनलिन रश बिकॉज ऑफ कोर्स वी सी दैट समबडी अप देयर हॉवरिंग इन द स्काई इज देयर टू प्रोटेक्ट अस। इट ऑल बिगैन इन द ईयर 1932 व्हेन द स्काईज ऑफ इंडिया विटनेस्ड अ न्यू डॉन। The Indian Air Force was officially established in 1932 with 6 Indian officers trained by the Royal Air Force and just 19 airmen. Small in number, but their dreams were as vast as the skies.
बिल्कुल, 1933 में वापति बाइप्लेन ने पहली उड़ान भरी और साहस, प्रतिबद्धता और हवाई प्रभुत्व की एक गाथा रची। भगवत गीता से लिया गया आदर्श वाक्य नभ स्पर्शम दीप्तम का अर्थ है गौरव के साथ आकाश को छूना, और ये कितनी शानदार उड़ान रही। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने जापानी सेना के विरुद्ध बर्मा अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने वायुसेना को पहली बड़ी पहचान दिलाई। 1945 में किंग जॉर्ज द्वारा भारतीय वायुसेना में रॉयल उपसर्ग जोड़ा गया।
And yes, Mukesh, post-independence, the Royal Air Force became Indian Air Force from the Indo-Pak War of 1947, where it helped defend Srinagar, to the 1965 war. The Indian Air Force flew thousands of sorties, striking enemy bases and protecting our ground forces. And who could forget the 1971 war, which led to the birth of Bangladesh? The IAF launched Operation Cactus Lily, carrying out over 4,000 sorties in 2 weeks. Aerial superiority was a game changer, and the Indian Air Force led from the front. In 1999, during the Kargil War, the Indian Air Force initiated Operation Safed Sagar, deploying Mirage 2000 jets to destroy enemy bunkers at high altitudes. This was the first time precision-guided munitions were used in the region.
आइए अब उन दिग्गजों को याद कर लेते हैं जिन्होंने इस विरासत का निर्माण किया. जी हां, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, जिन्हें अक्सर भारतीय वायुसेना के जनक के रूप में जाना जाता है. 1954 में पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख बने. उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने आज हम जो देख रहे हैं उसकी नींव रखी. फिर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा हैं, जो 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उनका जो जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. और निश्चित रूप से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जिनके 2019 के हवाई युद्ध के दौरान साहस और पाकिस्तान की कैद से वापसी ने उन्हें रातों रात राष्ट्रीय नायक बना दिया था.
ए मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. ए मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी.
यस मुकेश, द इंडियन एयरफोर्स ऑफ टुडे इज अ पावर हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी विद ओवर 1700 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग फाइटर्स, ट्रांसपोर्टर्स, हेलीकॉप्टर्स एंड यूएवीज. द इंडियन एयरफोर्स इज अमंग द मोस्ट फॉर्मेडेबल फोर्सेस इन द वर्ल्ड.
जी हाँ, सुखोई SU-30 MKI हमारे लड़ाकू बेवड़े का आधार बना हुआ है. तेज, शक्तिशाली और सटीक रफाल विमानों के आगमन ने हवा से हवा और हवा से जमीन तक सटीक हमले की अगली पीढ़ी की क्षमताएं जोड़ी हैं. और हम सिर्फ आयात नहीं कर रहे हैं, हम नवाचार भी कर रहे हैं. HAL तेजस एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है और भारत के बढ़ते एरोस्पेस उद्योग का प्रतीक है. भविष्य AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पहले से ही विकास के चरण में है.
That's right, Mukesh. And transport aircraft like the C-17 Globemaster III, C-130J Super Hercules and helicopters like the Apache and Chinook make up the versatile airlift and support wing of the Indian Air Force.
और अब आइए भारतीय वायुसेना की महिला योद्धाओं पर प्रकाश डालते हैं. फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, जो अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी. भावना कंठ और मोहना सिंह जैसी पायलटों के साथ महिलाएं हर मिशन में इतिहास रच रही हैं. 2021 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह रफाल उड़ाने वाली पहली महिला बनी. आज महिलाएं पायलट, इंजीनियर, नेविगेटर, डॉक्टर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और अन्य कई पदों पर कार्यरत हैं.
That's right. और उसके अलावा अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके हम लोग को ब्रीफिंग भी जिन्होंने दी और मैदान में भी लड़े. वी कैन नॉट फॉरगेट सोफिया कुरैशी ऑफ कोर्स. एंड यू नो, मतलब उनको को देख के ही कितना अच्छा लग रहा था. Isn't it those women in uniform, a great moment of pride. And Indian Air Force is not just a war machine, it's a lifeline in times of crisis. Whether it's floods, earthquakes or evacuations, the Indian Air Force is always the first on the scene. From Operation Rahat in 2013, rescuing over 20,000 people from Uttarakhand, to Operation Ganga in 2022, when Indian students were flown out from war-torn Ukraine, the Indian Air Force has played a silent, heroic role. The Indian Air Force has also delivered aid during international disasters in Nepal, Yemen, Sri Lanka and Afghanistan. And it's not just a national force, Mukesh. It's a global symbol of humanitarian strength.
बिल्कुल, सूर्य किरण और सारंग जैसी टीमों ने आसमान को तिरंगे के रंग में रंग दिया है। 50 से अधिक विमानों को सटीक उड़ान भरती देखना रोंगटे खड़े कर देता है और ये भारत के गौरव का प्रदर्शन है। और आज भारतीय वायुसेना प्रमुख के संबोधन ने हमें याद दिलाया कि भारतीय वायुसेना सिर्फ आज के लिए ही तैयार नहीं है, ये आने वाले कल के आसमान के लिए भी तैयारी कर रही है।
That's right, and yes, to all the young minds listening today, you too can touch the sky. The Indian Air Force offers careers not just for pilots, but also for engineers, meteorologists, doctors, and many more positions. You don't have to wear a cape to be a hero sometimes. All you need is a uniform. Wings on your chest and a heart that beats for the nation. तो किसी शायर ने खूब कहा था ना कि असली उड़ान जो है वो पंखों से नहीं हौसलों से होती है। तो अगर आप नहीं भी हैं सो कॉल्ड आसमान में, लेकिन आप इंडियन एयरफोर्स में जमीन पे भी रह के उन आसमान में उड़ने वालों की कितनी मदद कर सकते हैं। इनफैक्ट दे ऑल इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बिकॉज उनके बिना जमीन वाले अधूरे हैं, जमीन वालों के बिना आसमान वाले अधूरे हैं। एंड यस, एज वी ब्रिंग दिस ट्रिब्यूट टू अ क्लोज, लेट्स रिमेंबर द मेन एंड वुमेन हु फ्लाई so that we may sleep peacefully, who serve so that we may live in freedom. To the Indian Air Force, a big thank you for 93 years of courage, commitment and ceaseless service.
और अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
तो मुकेश, आज का हम लोग परिक्रमा का सफर शुरू कर रहे हैं कटक से। यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी वर्चुअली। ही ऑल्सो लॉन्च द 5 न्यू एनआईई एलआईटी सेंटर्स, इंक्लूडिंग 1 इन बालेश्वर इन ओडिशा। लेट्स हियर मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
The Digital University aims to make quality digital education accessible to all and to help bridge the country's digital skill gap. It will offer courses in artificial intelligence, cybersecurity, data science, semiconductors, and other emerging fields that are shaping the future. The university will follow a flexible learning model with digital classrooms, interactive tools, and virtual labs. Students and professionals will be able to learn at their own pace, while even those in remote areas will gain access to practical training and exposure. The new centers will function as regional hubs to support learners and promote local innovation. For Odisha, the Baleshwar Center is a significant step. Known for its defense and industrial base, Baleshwar will now provide its youth with opportunities to acquire advanced digital skills. Speaking to Akashvani Samachar, Head of PG Department of Computer Science at Fakir Mohan University, Baleshwar, Dr. Minati Mishra said, The digital university is expected to empower India's youth, prepare them for future jobs and strengthen the country's position in the global digital economy. For Parikrama, this is Sitishri Singh Rathore.
और उड़ीसा के बाद अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिलों में शामिल फतेहपुर का आकांक्षी ब्लॉक हथगांव प्रदेश का ऐसा पहला क्षेत्र बन गया है जहां बच्चों के टीकाकरण की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए की जा रही है। ये पहल न केवल बाल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी बल्कि बच्चों के परिजनों की चिंता भी कम करेगी।
फतेहपुर जिले में टीकाकरण की एआई के जरिए निगरानी का पायलट प्रोजेक्ट प्रथम चरण में हथगांव ब्लॉक से शुरू किया गया है। इस सिस्टम से टीका लगवाने की तारीख याद रखने की जरूरत नहीं होगी बल्कि बच्चों के टीकाकरण की जानकारी माता पिता को व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के जरिए 3 दिन पहले भेजी जाएगी। जिला प्रशासन का कहना है कि बेहतर रिस्पॉन्स मिलने पर आगे ये सुविधा दूसरे ब्लॉकों में भी शुरू की जाएगी। ये पोर्टल जन्म के साथ ही मंत्रा पोर्टल से जुड़ जाएगा और स्वतः टीकाकरण का अलर्ट भेजेगा। इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए एएनएम, आशा, सीएससी और पीएससी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि स्मार्ट वैक्सीनेशन ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया गया है, इसके माध्यम से ब्लॉक में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसमें पूरा डेटाबेस तैयार होगा कि कौन कौन से बच्चों का जन्म हो रहा है और उनको कौन कौन से टीके लगे हैं या आगे लगाए जाएंगे। इसके साथ एएनएम के लिए एक ऐप बनाया गया है जिसमें नियत तारीख सहज रूप से उपलब्ध होगी। ट्रायल के रूप में 3 एएनएम के साथ एआई का प्रयोग शुरू किया गया है जिसमें अच्छे परिणाम मिले हैं। इसे देखते हुए आगे जिले के सभी ब्लॉक में इसे शुरू किया जाएगा।
हमारी जनपद का जो हथगांव एक आकांक्षात्मक ब्लॉक है उसके लिए हमने एक स्मार्ट वैक्सीनेशन ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया है। ये इसके माध्यम से हम ब्लॉक में हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें एक पूरा डेटाबेस बनाया जाएगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनका जन्म हो रहा है और उनके कब कब कौन से टीके लगे हैं, कौन से ड्यू हैं। और इसी के साथ में AI के माध्यम से हमने जो डेटा एंट्री है वो भी बहुत आसान कर दी है, जिसमें ANM सिर्फ अपना MCP कार्ड अपलोड कर दें, उसकी एक फोटो, उसी से उसमें जो लिखी रहती है कि कौन सी वैक्सीन कब लगी थी वो सब डेटाबेस में अपने आप अपडेट हो जाएगा। जनपद में ही एक विकसित किया है सिस्टम और अभी हमने इसको टेस्ट बेसिस पे 3-4 ANM के साथ ट्राई किया था, शुरू किया था, तो उसमें काफी अच्छे हमें परिणाम मिले हैं। अभी AI का काफी उपयोग हम देख रहे हैं, चाहे वो ChatGPT हो या बाकी हो, तो हमारा यही उद्देश्य था कि किस प्रकार से हम टीकाकरण को 100% सुनिश्चित कराएं।
AI के माध्यम से डेटा एंट्री बहुत आसान हो गई है। अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी बिना तकनीकी जानकारी के भी एनालिसिस कर सकते हैं कि टीकाकरण अच्छे से हो रहा है या कमी है। वहीं समय और श्रम की बचत भी हो रही है जिससे कर्मचारी कोर वर्क में अधिक समय दे सकेंगे। परिक्रमा के लिए शैलेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
Mukesh, today I think a lot of things have changed, probably except, you know, especially in when, you know, we talk about mothers giving birth. तो पहले जमाने में तो हर कोई जो है घर पे ही जो है बच्चे पैदा होते थे, लेकिन we all know the risks that are associated with it. However, there are still many places, sadly in our country, जो लोग अभी भी hospitals नहीं जाना पसंद करते हैं. Maybe कुछ reservations हो या जो भी हो, but बहुत awareness हो गई है लोगों में. I think most of the people, whether in villages or towns or khazbas or shahar, they go to hospitals, but still, you know, in, for example, Malappuram district, there is a campaign going on against home births. So, very interesting report we have from Suresh.
A massive campaign against home births was launched in the district after a young woman who gave birth at a home in Kodur died during childbirth. The health department launched a campaign titled "The Safest Place to Give Birth is in the Hospital. Choose the hospital to make the delivery safe" to promote hospital birth. There are various reasons behind home births, such as backward social conditions, migrations, lack of transport facilities, cost of hospital births, bad experience in hospitals, opposition to allopathic treatment, belief in naturopathy and acupuncture treatment. Malappuram is the district with the highest number of home births in the state. In addition, more than 13 home births have been reported in Kozhikode, Palakkad, Thrissur and Alappuzha district. Awareness activities were conducted across the district on the benefits of giving birth in hospitals and healthcare of the child, and a meeting of religious leaders was convened under the leadership of collector, raising the message that babies should be born in the safest hands and that a hospital should be chosen for safe delivery. Awareness plays seminars led by people working in various fields, discussions involving socio-cultural leaders and various other awareness activities, public rallies and mass marches were held in various localities where home births are common. Suresh VK for Parikrama, Akashavani News, Kozhikode.
और अब परिक्रमा कार्यक्रम में वक्त हुआ है खेल के मैदान पर चलने का और जानने का वहां की हलचल के बारे में। तो बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में KL राहुल के शतक की बदौलत भारत की स्थिति मजबूत हो गई है और मैच के दूसरे दिन आज भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन बना लिए थे।
And if we talk about weightlifting, Mukesh, Indian weightlifter Mirabai Chanu has clinched silver in the women's 48kg category at the World Championships in Norway. Chanu lifted a total of 199 kgs, including 84kg snatch, plus 115kg clean and jerk to secure the second place overall. This marked Chanu's first World Championship since 2022 and her second competition since finishing fourth at the Paris 2024 Olympics. Time now for business news. Benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty, opened on a negative note and trade range bound for most of the session, but the indices surged during the last hour of trade to close over 0.2% higher. Sensex gained 224 points to close at 81,207, while Nifty added 58 points to settle at 24,894. And in the Indian bullion market, 24 karat gold was trading up at 1,17,690 rupees per 10 grams. Aur ye to waqt hi hai jab sab log sona khareedne jaate hain, to ek baar apne jo hai latest rates zarur hum log ke kehte hain check kar lijiye ki kya chal raha hai. Bahut sochna padega Mukesh.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
Today is the death anniversary of Kadambini Ganguly, who, along with Chandramukhi Basu, became the first female graduates in India from Bethany College in Kolkata. Kadambini Bose was born in Bhagalpur, British India, modern-day Bangladesh, on July the 18th, 1861.
She was born during the Bengali Renaissance, which was a period of religious, social, and educational advancement in the Bengal region from the 19th century to the early 20th century. Kadambini was directly impacted by this cultural movement, as her father was an influential member of the Hindu Reformation movement, Brahmo Samaj, as well as co-founder of women's rights organization, Bhagalpur Mahila Samiti.
And although this was a time when Indian women had scarce educational opportunities, Kadambini's father understood the importance of education and allowed Kadambini to attend school.
After primary school, Kadambini attended India's first college for women, the recently established Banga Mahila Vidyalaya, which later merged with Bethune College. The school adopted the Calcutta University entrance exam and, in 1879, Kadambini became the first woman to pass this rigorous academic test.
Kadambini's success inspired Bethany College to start their first arts program and open up graduate courses. The first classes consisted of only two students, Kadambini and her peer, Chandramukhi Basu. They completed their studies in 1883, becoming the first women to graduate college in India.
After graduating, Kadambini married Dwarkanath Ganguly, her mentor and teacher at Bethany College. Dwarkanath, a passionate leader of India's women's rights movement, encouraged his wife to pursue a medical degree. Calcutta Medical College refused to accept Kadambini, but the couple fought hard and she was eventually admitted as their first female medical student. Despite continued resistance from teachers and staff, Kadambini graduated Calcutta Medical College in 1886.
Along with Anandi Joshi, Kadambini Ganguly became the first woman in India to study medicine and earn a degree in 1886. While Anandi Joshi studied at the Women's Medical College of Pennsylvania in the United States, Ganguly pursued Western medicine at Calcutta Medical College, CMC.
Criticism from conservatives opposing female liberation could not hold her back, and Kadambini chose to pursue the highest possible medical qualification. She travelled to the United Kingdom in 1892 and received three more doctoral certifications. When she returned to India, she worked as a gynecologist at the Lady Dufferin Hospital and later started her own private practice.
Kadambini's busy life as a doctor and mother of eight children did not stop her from playing a role in India's women's rights movement. She was one of the six representatives in the first female delegation of the 1889 Indian National Congress. And in 1906, she helped organize the Women's Conference in Calcutta. She was also extremely active in many other movements, like one that fought to improve work conditions for female Eastern Indian coal miners. After her husband's death in 1898, she practiced medicine in Kolkata till her death in 1923.
और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर को. वे उदारवादी दृष्टिकोण की व्यक्ति थे और देश की आजादी के बाद वे संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए. वकालत की डिग्री लेने के बाद अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने कुछ दिन मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया. फिर इंग्लैंड से शिक्षा लेकर 1907 से मद्रास में वकालत करने लगे। अल्लादिका, मद्रास विश्वविद्यालय तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं के साथ निकट का संबंध था। 1942 के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया और 15 वर्ष तक उन्होंने मद्रास के एडवोकेट जनरल के पद पर काम किया। और हम याद कर रहे हैं उड़ीसा के समाजसेवी और सार्वजनिक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण साहू को। और 1947 में ओडिशा विधानसभा के लिए वे चुने गए थे और वो भारत की संविधान सभा के सदस्य भी रहे। लक्ष्मी नारायण साहू संविधान का मसौदा तैयार करते समय अपनी उग्र और तथ्यात्मक बहस के लिए जाने जाते थे। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1955 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ओडिशा के इतिहास पर उनके कार्य और लेखन के लिए उन्हें इतिहास रत्न की उपाधि भी दी गई थी। और अब हम याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुबीर गोकर्ण को। वे 24 नवंबर 2009 से 31 दिसंबर 2012 तक भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर रहे थे। सुबीर गोकर्ण उस समय ये पद हासिल करने वाले सबसे युवा अर्थशास्त्री थे। सुबीर गोकर्ण स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एशिया पैसिफिक के मुख्य अर्थशास्त्री और क्राइसिल के मुख्य अर्थशास्त्री भी थे। उन्हें 2015 में IMF के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 3 अक्टूबर 1959 को जन्मे सुबीर गोकर्ण 2009 से 2012 तक RBI के डिप्टी गवर्नर रहे और वित्त मंत्रालय ने कहा था कि गोकर्ण का 3 दशक का उल्लेखनीय कार्यकाल रहा।
We're also remembering J.P. Datta today. It's his birthday, and J.P. Datta का जैसे ही हम लोग नाम सुनते हैं तो कुछ उनकी जो कहते हैं मेमोरेबल फिल्म्स हैं वो अपने आप नजरों में घूमने लगती हैं। बीड, गुलामी, यतीम, बंटवारा, क्षत्रिय बॉर्डर एंड रेफ्यूजी, जिनके गाने अभी हम लोग सुनाएंगे, isn't it? Well, a producer, writer and director who predominantly works in Hindi cinema. He's best known for making patriotic action war films. Yes, we all remember Border of 1997 and even LOC Kargil of 2000.
जी हाँ, जेपी दत्ता ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1985 में फिल्म गुलामी से की थी और इसके बाद यतीम, बंटवारा, हथियार और क्षत्रिय जैसी फिल्में निर्देशित की और साल 1997 में उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर बनाई थी। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इसके बाद जेपी दत्ता ने युद्ध पर ही आधारित रिफ्यूजी फिल्म का भी निर्माण किया।
तो पहले उनकी जो फर्स्ट फिल्म थी उसका गाना सुना जाए।
घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, के तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, के घर कब आओगे, के घर कब आओगे।
और अपने श्रोताओं को बताएं कि अपने करियर में रिफ्यूजी के बाद वर्ष 2003 में जीपी दत्ता ने करगिल पर आधारित फिल्म LOC करगिल बनाई और एक बार फिर अपने बिजोड़ निर्देशन की वजह से उन्होंने लोगों के दिलों को जीता। वर्ष 2006 में उन्होंने पीरियडिक फिल्म उमराव जान बनाई जिसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जोड़ी एक साथ दिखाई दी थी और ये फिल्म भी उनकी कुछ हिट फिल्मों में रही। और हाल के वर्षों में जेपी दत्ता 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस फिल्म में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को जीवंत करने की कोशिश की जा रही है।
एंड मुकेश, आपने जिक्र किया रेफ्यूजी का, तो खूबसूरत सा ये गाना सुनते हैं।
तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सायरा मुश्ताक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।